Başvuruları. Alhamdülillah. Ve kafa. Ve selamun ala amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cahadu fina lenahdiyennahum subulana. وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम तसहील बहश्ती ज़ेवर से किताब सुलूक वल एहसान पढ़ते हैं और इसमें इखलाक़े अखलाक़े ज़मीमा और उनका इलाज का सब टॉपिक अभी भी चल रहा है। पिछली क्लास में खुद पसंदी और उसका इलाज यानी अखलाक़े ज़मीमा जो बुरे अखलाक़ होते हैं, मज़म्मत के काबिल अखलाक़ होते हैं, मैनर्स होते हैं, तो उनकी बहुत सारी किस्में हज़रत आरवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई ताकि हम उनको अपने अंदर डायग्नोज कर सकें, ठीक है, तशखीस कर सकें कि क्या हम उनमें से किसी बुरे अखलाक के हामिल तो नहीं हैं। तो इनमें जो आखिरी है वो खुद पसंदी और उसका इलाज, जिसके ऊपर पिछली क्लास में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी और आप में से किसी ने वक्त निकाल करके उसके नोट्स भी लिखे और उनको भी थोड़ा सा करेक्शन के साथ साजिज ने फिर ग्रुप के ऊपर शेयर कर लिया था रिकॉर्डिंग के साथ। तो उम्मीद है कि सबको उन नोट्स को पढ़ने का मौका मिला होगा और बात सबके समझ में आई होगी। तो वैसे तो ये टॉपिक अभी मुकम्मल चूंकि नहीं हुआ था, तो इस वजह से इबारत हम पढ़ते हैं किताब में से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर कोई अपना आपको अच्छा समझे अगरचे दूसरों को बुरा और कम ना समझे तो ये भी बुरी बात है, ठीक है। तकब्बुर और उजब खुदपसंदी, तकब्बुर और खुदपसंदी में फ़र्क समझाया था पिछली क्लास में। दूसरों को बुरा समझना जो है वो तकब्बुर की वजह से होता है और अपने आप में बस अपने आप को बस अच्छा समझते रहना और दूसरों को जो है वो सिर्फ यानी अपने से कमतर ना समझना लेकिन अपना हुकूक अदा ना करने वाला जालिम समझना, तो ये खुदपसंदी होती है, ठीक है। खुदपसंद शख्स के बारे में बताया था ना कि ये दीन का भी इल्म हासिल करता है ना, तो उसमें भी फिर इसको नुकसान ही हो रहा होता है क्योंकि इबादात का इल्म हासिल करके ये इबादतें करता है तो अपने आप को और ज़्यादा अल्लाह का बरगुजीदा बंदा समझना शुरू हो जाता है, यानी इसकी खुदपसंदी में इजाफा ही हो जाता है इबादतें कर करके। और जहाँ मामलात का मामला आता है, दीन का जो दूसरा शोबा है मामलात, तो उसमें जो है ये अपने हुकूक का इल्म हासिल करता है कि मेरे क्या हुकूक हैं और मुझे लोगों को मुझे क्या क्या अदा करना चाहिए, तो दूसरों के हुकूक क्या हैं और इसके अपने फ़राइज़ क्या हैं, इससे उसको सरोकार नहीं होती। तो जब ये दूसरों को देखता है कि भाई वो इसके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, और हकीकत तो यह है कि कोई भी सही मानों में आपका हक अदा कर नहीं सकता, ऐसा कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो किसी दूसरे बंदे को जो है ना वो यानी उसकी तमाम एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके, तो कोई भी इसकी एक्सपेक्टेशन को तो पूरा कर ही नहीं सकता। तो फिर ये हर एक से नाराज़ रहता है और अपने आप को मजलूम समझता रहता है, दूसरों को जालिम समझता है। तो हजरत फरमाते हैं कि हदीस में आया है कि ये खसलत दीन को बर्बाद करती है, ठीक है, दीन को बर्बाद करती है, यानी दीन का इल्म भी हासिल किया और ये इल्म भी जो है ना वो उसके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अब ऐसे शख्स ने क्या अपने दीन को बेहतर बनाना है। और ये बात भी है कि ऐसा आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करता क्योंकि इसकी तो इस्लाह की ज़रूरत ही कोई नहीं, ये तो खुद ही जो है वो सबसे ज़्यादा पाक और पवित्र और सबसे ज़्यादा नेक इंसान है, ठीक है। बेचारा सारी दुनिया का सताया हुआ, सारी दुनिया का पिटा हुआ मारा हुआ, तो इसको तो इस्लाह की फिक्र करने की जरूरत ही कोई नहीं है ना। इस्लाह की फिक्र तो दूसरे लोग करें जो इसके साथ जुल्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो अपने आप को अच्छा समझता है तो उसको अपनी बुराइयां कभी नजर नहीं आएंगी, ठीक है। अपनी बुराइयां कभी नजर नहीं आएंगी, इसके बारे में आखिरी में बात क्या हुई थी कि भाई बुराइयां तो नजर उस वक्त आएंगी ना जब आप किसी आईने के सामने खड़े होंगे, और इसको तो जरूरत ही महसूस नहीं होती आईने के सामने खड़े होने की, ठीक है ना। जहन में एक एहतमाल तो हो ना कि हाँ भाई हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो मेरे साथ, हो सकता है कोई चीज जो है वो मेरे चेहरे पे खराब लगी हुई होगी, तब इंसान आईने के पास जाएगा ना, खामखा तो उठ करके आईने के पास नहीं जाता, ठीक है। तो इसको तो ऐसी कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती, इस वजह से आईने से ये दूर ही रहता है और आईनों को अपने से दूर रखता है। यानी यहां पर जाहिर है जिस्मानी फॉल्ट्स की बात नहीं हो रही, मेकअप के फॉल्ट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर रूहानी फॉल्ट्स की और अखलाकी फॉल्ट्स की बात हो रही है, अखलाकी ऐबों की बात हो रही है ना। तो अखलाकी ऐब जो है वो ये जिस्मानी ये फिजिकल आईने के अंदर नजर नहीं आते ना, ठीक है। इसके लिए तो कोई रूहानी आईना चाहिए होता है। रूहानी आईना क्या होता है? इंसान होते हैं, इंसान होते हैं जो कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए आईने के तौर पे बनाए हैं, एक दूसरे के उयूब बताते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के जो है वो अच्छाइयां भी बताते हैं, लेकिन इसलाह के लिए तो उयूब बताने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छाइयां बताना जो है वो तो मायूसी के दलदल से निकालने के लिए अच्छाइयां बताने की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन कोई मायूस हो तो उसको उसके दलदल में से निकाला जाए ना अच्छाइयां बता करके। आजकल तो कोई मायूस ही नहीं होता, राइट। आजकल तो मामला ये है कि कोई भी मायूस नहीं है, अपने आप में सभी जो है ना वो खुश हैं, ठीक है। मायूस होते भी हैं तो वो प्यार मोहब्बत के मामलात में नाकामी हो गई तो खुदकुशी कर ली जाकर के, या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो जाकर खुदकुशी कर ली, ठीक है। तो आजकल तो मामला ही पूरा का पूरा उल्टा हुआ हुआ है कि आजकल सारी दुनिया खुद पसंदी का शिकार है। खुद पसंदी का शिकार को बाहर निकालने के लिए तो फिर उसके ऐब भी बताने पड़ेंगे। अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका इलाज ये है कि अपने ऐबों को सोचा और देखा करे, ठीक है। यानी कुरेदे अपने अंदर, कुछ ऐब जो है ना उनको कुरेदे कि भाई क्या मेरे अंदर खराबियां हैं, ऐबों को सोचा और देखा करे और ये समझे कि मेरे अंदर खूबियां, मेरे अंदर जो खूबियां हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है। अपने ऐबों को सोचा और देखा कैसा कैसे करेगा, ठीक है। ऐबों को कोई कैसे सोचेगा और कैसे देखेगा अपने अंदर, ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब इसको पता हो कि ऐब किसको कहते हैं, क्या चीज ऐब होती है, ठीक है, क्या चीज ऐब होती है। जब इसको पता चलेगा कि ये फलानी जो जो खसलत है ये ऐब है, ये बुराई है, तब ये अपने अंदर झांक के देख सकता है कि क्या ये बुराई मेरे अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अगर इसको बुराई की डेफिनेशन ही नहीं पता, इसको पता ही नहीं कि क्या चीज बुराई होती है क्या चीज अच्छाई होती है, तो ये अपने अंदर कैसे ऐब तलाश करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये म्यूजिक सुनने को अच्छा समझता है, ऐब नहीं समझता, ठीक है। म्यूजिक सुनने को ऐब नहीं समझता, अच्छा समझता है और ये म्यूजिक सुनता है। तो जब ये अपने अंदर ढूंढेगा कि भाई मेरे अंदर क्या ऐब है, तो क्या म्यूजिक सुनने को ये अपने अंदर ऐब के तौर पे देखेगा? नहीं, इसलिए कि ये तो म्यूजिक सुनने को ऐब समझता ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह के बंदे म्यूजिक सुनना ऐब है, म्यूजिक सुनना एक ऐब है। कैसे ऐब है? ये पूछेगा क्यों है भाई ऐब, ये तो रूह की गजा होती है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, ठीक है, उन्होंने फरमाया कि मौसीकी जो है ना ये दिल के अंदर जिना के जज्बात को ऐसे पैदा करती है कि जैसे बारिश जमीन के अंदर सब्जे को पैदा करती है, ठीक है। तो अगर ये नबी अलैहिस्सलाम की बात को खातिर में लाता है तो उसको फिर समझ में आएगा कि हाँ वाकई ये फिर तो उसका मतलब है कि मौसीकी ऐब है और मैं इस ऐब में मुब्तला हूँ, ठीक है। तब फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी ना, फिर ये उसकी इसलाह की कोई फिक्र करेगा। तो पहले तो ऐबों का बताना पड़ेगा ना कि ऐब होते क्या, यानी एक जनरल डेफिनेशन। ये जनरल डेफिनेशन कहाँ से मिलती है? ये किताबों से मिलती है या उलमा और मशाइख के बयानात से मिलती है। उलमा और मशाइख के जो बयानात होते हैं ना, उनके अंदर बताया जाता है कि ऐब क्या होते हैं। ठीक है, जब ये बयानात को सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि फलानी चीज जो मैं कर रहा था ये तो ऐब थी, मैं तो इसको नेकी समझ के कर रहा था, लेकिन ये तो एक गुनाह था। या ये किताब पढ़ेगा, अल्लाह वालों की किताबों में भी इसी तरह की बातें होती हैं, तो उसको पता चलेगा अच्छा फलानी चीज जिसको मैं नेकी समझ के करता था ये तो बुराई थी। ठीक है, तब फिर ये अपने अंदर नजर डालेगा तो उसको बुराई भी यानी नजर आएगी। तो जो हजरत ने फरमाया ना कि ऐबों को सोचा और देखा करे, ये वैक्यूम में ये काम नहीं हो सकता, ये खला में ये वाला काम नहीं हो सकता, इसके लिए पहले आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा कि क्या चीज नेकी होती है और क्या चीज बुराई होती है। इस इल्म के बगैर नहीं हो सकता। इल्म कैसे हासिल होगा वो भी आपके सामने बात हो गई। ठीक है, इल्म तो दूसरों से हासिल करना पड़ता है, चाहे वो किताबी किताबी शक्ल में हासिल किया जाए, चाहे वो जुबान जुबानी शक्ल में हासिल किया जाए। फिर उसके बाद अगली चीज के ये जो मेरे अंदर खूबियां हैं, जो भी वाकई खूबियां हैं, दो का आपकी खूबी को बयान कर रहे हैं। ठीक है, किसी अकलमंद इंसान ने कहा आपको कि हाँ भाई आपके अंदर ये खूबी है, तो अब गलत तो नहीं होगी वो बात, वाकई आपके अंदर ये खूबी होगी। ठीक है, तो अब उसके ऊपर ये सोचे कि ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है। ठीक है, यानी मेरी मेहनत की वजह से मेरे अंदर ये खूबी नहीं आई है, बल्कि असल में तो अल्लाह ताला की ही नेमत है। अल्लाह ताला मेहनतों के बावजूद नतीजे नहीं देते। जरूरी तो नहीं है कि कोई इंसान किसी काम के लिए मेहनत करे तो उसको वो चीज मिल भी जाए, ये कोई कोई लाजम नहीं है इस दुनिया के अंदर, ये कोई उसूल नहीं है इस दुनिया का कि जिस चीज के लिए आपने मेहनत करी है वो चीज आपको मिल जाए। लोग किस किस चीज के लिए मेहनत नहीं करते हैं, कितनी कितनी मेहनतें नहीं करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, कोई कोई इम्तिहान पास करने के लिए लोग दिन रात जो है वो पढ़ाई करते हैं लेकिन हर अटेम्प्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। कोई जॉब हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन आखिरी वक्त में कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही होती। ठीक है ना, लोग जो है वो जो खवातीन है वो औलाद के लिए, कुछ खवातीन होती हैं उनको औलाद नहीं हो रही होती, वो क्या क्या कुछ जतन नहीं कर रही होती औलाद के लिए, हर डॉक्टर के पास जाती हैं, हर पीर फकीर के पास जाती हैं, हर जो है वो तरीका इस्तेमाल करती हैं, राइट, लेकिन औलाद नहीं होती। तो मेहनत के नतीजे में, मेहनत के बाद जो है वो नतीजा मिल जाना, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, राइट। अगर अल्लाह का फैसला नहीं था तो फिर आपको नहीं मिलने थी। तो जो आपके पास ने जो जो भी खूबियां हैं तो ये अल्लाह का की देन है। ठीक है ना, ये हमारी मेहनतों का नतीजा नहीं है। जब अपनी मेहनत की नफी करेगा ना, तब उसके बाद फिर ये खुद पसंदी मुबतला नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सोचकर अल्लाह ताला का शुक्र किया करे और दुआ किया करे कि अल्लाह मुझे इस नेमत से कभी महरूम ना फरमाना। ठीक है, जब अल्लाह ताला को देने वाला मानेगा सही मानों में, तो फिर उसको इस बात की भी फिक्र होगी कि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। ठीक है, इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम जो कि इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे ना, कामिल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, ए अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूँ नेमतों के मुझसे छिन जाने से, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मिन ज़वाल निअमतिक व तहव्वुल आफियतिक। ठीक है ना, आफियत भी एक नेमत है अल्लाह ताला की, लेकिन इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ज़वाल निअमतिक को जनरलाइज करके दुआ मांगी, फिर आगे स्पेसिफिक भी दुआ कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की भी दुआ कर रहे हैं, अलग अलग नेमतों की। क्या वो तहव्वुल आफियत है, ये आफियत जो है ना, जिस आफियत की हालत में मैं हूं वो मुझसे पलट जाए। ठीक है, वो फुजात निकमतिक, और अचानक की सजा से, राइट, अचानक सजा मेरे ऊपर आ जाए, मैं उससे भी आपकी पनाह मांगता हूँ। सजा का ना आना ये अल्लाह ताला की नेमत है। जवाल नेमत की दुआ तो पहले मांग चुके हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, लेकिन फिर अलग अलग भी दुआ मांग रहे हैं, वो तहव्वुल आफियतिक व फुजात निकमतिक निकमतिक, जमीए सख्तिक, और आपकी हर किस्म की नाराजगी से मैं आपकी पनाह मांगता हूं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की अवेयरनेस देखें, नबी अलैहिस्सलाम की कॉन्शियसनेस देखें कि जो भी अच्छाई मेरे पास है ना, कि मैं आपकी सजा से बचा हुआ हूं, राइट, मैं आपकी नाराजगी से बचा हुआ हूं, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नेमत है, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, राइट, आप ही ने ये मुझे दी है और आप ही इसको मुझसे ले सकते हैं, आपसे कोई पूछ नहीं सकता क्यों ऐसा किया आपने, आपको कोई कटहरे में खड़ा करने वाला नहीं है कि आप हिसाब दें कि आपने किसी को नेमत दे करके वापस क्यों ले ली, अल्लाह ताला से कोई हिसाब नहीं ले सकता, राइट। दुआए हाजात जब पढ़ते हैं तो जरा सोच करके हम पढ़ा करें, हम किससे दुआ मांग रहे हैं, बेहतरीन दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बे दिल अर्शिल अजीम, अर्श अजीम का जो रब है, राइट, अर्श अजीम का रब है अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो हम और आप क्या हैसियत रखते हैं उसकी इस मखलूक के अंदर, राइट। तो जो खुद पसंदी का इलाज, यानी खुद पसंदी के इलाज के बारे में भी अब हमने पढ़ लिया, इसमें एक और भी नुक्ता जो कि पिछली दफा रह गया था वो ये कि जो शख्स खुद पसंदी का शिकार होता है तो उसके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है ना, तो वो उस मुसीबत को अपने गुनाहों की सजा के तौर पर नहीं देख रहा होता, ठीक है, कि मैंने कोई गुनाह किया होगा इस वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने जोन के अंदर गुनाह नहीं करता, ठीक है, तो फिर गुनाह की सजा किस बात की। तो ऐसा शख्स जो है ना, वो जब कोई मुसीबत उसके ऊपर आती है ना, और उसने दीन का इल्म भी हासिल किया हुआ होता है, जो दीन के इल्म से बिल्कुल बेबहरा होता है ना, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जिसने दीन का इल्म हासिल किया होता है ना, उसके ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो क्योंकि किताब में पढ़ चुका होता है कि मुसीबतें जो है ना, वो अल्लाह वालों के ऊपर उनके दराजात बुलंद करने के लिए आती हैं, अल्लाह वालों के ऊपर मुसीबतें उनके दराजात बुलंद करने के लिए आती हैं, तो ये फिर ना चूंकि अपने आप को अल्लाह वाला समझता है, तो ये ही समझता है कि ये मेरी गुनाह की वजह से क्यों थोड़ी आई ये मुसीबत, ये तो मेरे दराजात बुलंद करने के लिए मुसीबत आई हुई है, ठीक है, तो इवन मुसीबत भी इसको झंझोड़ नहीं पा रही होती, मुसीबत भी इसको जो है ना, वो अब इसके गलत फहमी से बाहर नहीं निकाल पा रही होती, हालांकि बड़े बड़े लोग जो है ना, वो मुसीबत के वक्त में फिर उनको अल्लाह याद आ जाता है, मुसीबत के वक्त में फिर वो जो है वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, लेकिन खुद पसंद इंसान जो है ये मुसीबत के वक्त में भी गुनाहों से तौबा नहीं करता, कितनी बड़ी ये रूहानी बीमारी है और कितनी गहरी और खतरनाक रूहानी बीमारी है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, अब हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं कि एक काबिले तवज्जो बात, बातनी अमराज के जो इलाज मस्कूर हुए हैं उन पर एक दो मरतबा अमल करने से बातनी इस्लाह नहीं होती और अंदरूनी बुराइयां खत्म नहीं होती, बल्कि इन तदाबीर को मुसलसल इख्तियार किया जाए और हर वक्त इस्लाह की फिक्र रहे, क्योंकि इंसान का नफ्स शरीर है और बुराई का हर वक्त हुक्म देता है उसकी तरफ हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, तो इलाज जो है वो एक दफा दवा खा लेने से तो नहीं होता ना, ठीक है, दवा को जो है वो आपको एक रेजिमेंट के साथ इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उसका एक तरीका होता है, डोजेज होती है उसकी, कोई टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, और साथ साथ जो है वो एहतियात भी करनी पड़ती है, तो रूहानी बीमारियों का भी यही मामला है कि उनके लिए जो जो इलाज की तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं तो उनमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस चाहिए होती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी रूहानी इलाज के सिलसिले का हिस्सा बन जाया जाए, ठीक है, किसी सिलसिले का हिस्सा बन जाया जाए, किसी ऐसे माहौल के अंदर आ जाया जाए और उसमें अपने आप को दाखिल कर लिया जाए कि जिस माहौल के मदद से जो है ना, वो इंसान इस इलाज के प्रोसेस के अंदर लगा रहे, उसको याद दहानियां भी होती रहे और उसको कुछ मोटिवेशन भी मिलती रहे, ठीक है, और उसको फिक्र भी लगी रहे, तो इस तरीके से फिर आसानी हो जाती है। जो अपने आप को अलग थलग करके समझता है कि जी मैं खुद से इलाज कर लूंगा, तो उसका जो है वो इलाज नहीं हो पाता। तो लगा रहता है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, ठीक है, जो पैवस्ता रहता है ना, तो फिर उसका इलाज होता रहता है, चाहे बेशक बहुत जाहिरी तौर पर जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट्स नजर ना भी आ रही हो, नजर ना भी आ रही हो ना, फिर भी पैवस्ता रह शजर से, यानी जो लगा रहता है उसका इलाज होता रहता है, अगरचे कि जाहिरी तौर पर नजर ना आ रहा हो लेकिन बातनी तौर पर उसका इलाज हो रहा होता है। भाई इस दौर इस जमाने में आप गुनाहों के माहौल से हट कट के किसी नेकी के माहौल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप नेकी के माहौल में जुड़े हुए हैं और वो आप जुड़े ही रह रहे हैं, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा इलाज है, ठीक है ना। यानी अगर आप कट करके वापस बुराई के माहौल में चले जाते तो फिर क्या होता, ठीक है, वापस बुराई के माहौल में चले जाते तो फिर क्या होता, ठीक? तो भाई सिर्फ रिटेन करना भी अपने आप को ना इस माहौल के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस दौर जमाने में देखें, हर तरफ जो है वो बीमारियां हैं, और यानी अनइमेजिनेबल क्वांटिटी एंड एंड क्वालिटी ऑफ बीमारियां हर तरफ मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर आप नेकी के माहौल में जुड़े हुए हैं, बेशक ऐसा नहीं है कि आपकी अब जो है ना वो रोजाना आपको तहज्जुद नसीब होनी शुरू हो गई हो, ठीक है, और हर वक्त जो है ना वो कुरान मजीद खोल करके आप पढ़ते हैं और आपकी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो जाते हैं, है ना, या नमाज के अंदर जो है वो आपके बड़ा जो है वो यानी अर्श अजीम की जो है वो आप सैरें कर रहे हैं नमाज पढ़ने के अंदर, ठीक है, या बड़ी बड़ी और नेकियों की आपको तौफीकें मिल रही हैं, अगर ये सब कुछ नहीं भी है तो भी कम अज कम आप जुड़े हुए तो है ना, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि हम इस नेकी के माहौल के अंदर जुड़े हुए हैं। एक दफा, खैर छोड़ो इस बात को, किसी ने कोई सवाल लिखा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुसीबत हमारे ऊपर गुनाहों की वजह से आई है या दर्जात की बुलंदी के लिए आई है, हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता चलने की जरूरत ही कोई नहीं है, राइट। आप इस फिक्र को खत्म करें अपनी जिंदगी से कि ये मेरे ऊपर दर्जात की बुलंदी के लिए आई है, जिसके जहन में ये फिक्र पड़ी हुई है ना कि मेरे ऊपर ये मुसीबत मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए आई है, इसका मतलब ये है कि ये खुद पसंदी का शिकार बंदा है, इसलिए कि जो खुद पसंदी का शिकार नहीं होता ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि ये मेरे ऊपर मेरे गुनाहों की वजह से आई है। जो शख्स ये सोच रहा है कि क्या ये मेरे गुनाह की वजह से आई है या मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए आई है, इसका मतलब ये है कि वो खुद पसंदी का शिकार है। लिख लें इस बात को भी, अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या ये मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए आई है, अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या ये मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए आई है, ये इस बात की दलील है कि आप खुद पसंदी का शिकार है, आपको इस फिक्र की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, किसी इंसान को इस फिक्र में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई? किसी के जहन में अगर नहीं क्लियर हुई हो तो पूछ ले भाई। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से मुसीबत आई है, बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से मुसीबत आई और किसी और दूसरी वजह से नहीं आई आपके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर हमें और कोई दमे, वैसे तो अकली दलील, मतलब अकली तौर पर यह बात क्लियर है, लेकिन अगर कोई नकली दलील मांगता है कि हमें कोई दलील दीजिए, आप कुरान मजीद से दलील दीजिए, आप हदीस मुबारका से दलील दीजिए, बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं और आपको भी अजबर याद होंगी वो दलीलें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनस्सालिमीन, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से मुसीबत आती है। ये जो है ना कि आपको दरजात की बुलंदी के लिए आई है, अपने अपने तो बिल्कुल गाड़ के बाहर फेंक दें इस चीज को अपने अंदर से। हाँ, खुदकुशी करने जा रही हो ना, अगर है ना, अगर खुदकुशी करने के, वैसे तो कोई जाएगा नहीं खुदकुशी करने के लिए, कोई गुनाह की वजह से खुदकुशी नहीं कर रहा होता, सारे के सारे जो है ना वो दूसरे चक्करों की वजह से खुदकुशी कर रहे होते। ठीक है, अगर खुदकुशी, ये तो सोच ही, फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें कि आप ये सोच सोच करके कि हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, चलो मैं जाके खुदकुशी कर लूं। नहीं, बिल्कुल शैतान आपको ना इस वजह से खुदकुशी, यानी फिक्र ही ना करें, ऐसे कोई इस वजह से कोई खुदकुशी नहीं करता। ठीक है ना, इस वजह से कोई खुदकुशी नहीं करता, तो बिल्कुल परवाह ही ना करें कि मैं इस वजह से मायूसी का शिकार हो जाऊंगी, ठीक है, और खुदकुशी कर लूंगी जा करके। बाकी है कि जिसकी जिंदगी में शेख होता है ना, तो शेख उसको बता देते हैं कि भाई आप टेंशन में मुब्तला मत हो। ठीक है, अच्छा आगे चलें। दिल की जितनी बुराइयां हैं और हाथ पांव से जितने गुनाह होते हैं, उनके इलाज का एक आसान तरीका यह भी है कि जब नफ्स से कोई बुराई या गुनाह का काम हो जाए तो उसको कुछ सजा दिया करें। और दो सजाएं आसान हैं इसलिए कि उन्हें हर शख्स कर सकता है। एक तो यह है कि अपने जिम्मे जुर्माने के तौर पर कुछ सदका मुकर्र कर ले, जब कोई बुरी बात सरजद हो जाया करे तो वो जुर्माना गरीबों में बांट दिया करे, अगर फिर गुनाह हो जाए तो दोबारा इसी तरह करें। दूसरी सजा यह है कि एक दो वक्त का खाना ना खाया करें। अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सब बुराइयां छूट जाएंगी। ठीक है, हजरत ने बहुत ही माशाल्लाह डोमेस्टिक किस्म के, घरेलू किस्म के दो हल बता दिए हैं। अब मसला यह है कि हल तो हजरत ने बता दिए हैं, हकीम उम्मत हैं और हम उनके हल के ऊपर बिल्कुल भी हम डाउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी बिल्कुल 100% सही हल बताएं। मसला सारा का सारा यह है कि ये हल करेगा कौन। ठीक है ना, कि इतना उसको फिक्र हो कि मुझसे फिर वही गलती हो गई है ना, और इसका मैंने इलाज करना है और मैं इसको जो है ना वो अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद वो जाकर के सबका करे। ठीक है ना, तो ये जिसने कर लिया उसके उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, वरना डॉक्टर का काम तो होता है इलाज बताना, डॉक्टर का काम पिछली दफा भी बात हो चुकी है ना, शिफा देना तो डॉक्टर का काम नहीं होता। ठीक है, तो इलाज बता दिया, लेकिन इस इलाज को करेगा कौन? जो करेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसी तरह खाना खाना छोड़ देना, तो जो पहले से ही खाना छोड़ी हुई हो तो उसको क्या फायदा इससे, ये तो उसको फायदा होगा जिसने के खाना नहीं छोड़ना था, लेकिन अब खाली अल्लाह की रजा की खातिर और अपने गुनाह की इसलाह की खातिर वो खाना छोड़िए। ठीक है, तो उसको फिर फायदा हो जाएगा। लेकिन ये दो बहुत ही सादा से घरेलू किस्म की आदत ने टोट के बता दी है। बाकी है कि अल्लाह का जिक्र करना और मुराकबा करना और शेर के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाना, या जो है वो इवन अपने साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं उनको जो है ना ये इख्तियार दे देना कि भाई मेरे अंदर अगर आप कोई बुराई देखें तो आप मुझे टोक दिया करें और आप मुझे मत छोड़ा करें, आप मेरी इसलाह किया करें। ठीक है ना, बहुत सारे और दूसरे हल भी हैं इन रूहानी बीमारियों के। ठीक है, तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है तो इससे हमें कुछ इदराक हासिल हुआ होगा कि भाई क्या क्या जो है ना वो अखलाकी बुराइयां होती हैं, और हमें कुछ मौका मिला होगा या इंशाल्लाह आगे हम इसका एहतमाम करेंगे कि अपने गिरेबान में झांक करके खुद देखें कि जी हमारे अंदर इनमें से कौन कौन सी बुराइयां मौजूद हैं, और इनके सद्देबाब के लिए, इनके इलाज के लिए हम कुछ फिर असबाब वगैरह अख्तियार करना शुरू करें, और अपने जोन के अंदर से जो है ना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बस मुझे किसी इस्तार की जरूरत नहीं है और मैं तो सब ठीक कर रही हूँ, इस जोम से निकलने में हमारे लिए ये सारी बातें मददगार साबित होंगी। इस उम्मीद और दुआ के साथ हम अगले चैप्टर को भी पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी हैं हमारे पास। तो अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके, अब तक तो हमने अखलाक जमीमा पढ़े, ठीक है, मनफियात को पहले पढ़ा हमने ताकि मनफी से जो है वो निजात पाना हमारे लिए मुमकिन हो, और फिर उसके बाद अखलाक हमीदा, अच्छी बातें जो जो पसंदीदा तहमीद के काबिल हैं, हम्द के, सना के काबिल हैं जो चीज़ें, और उनके हुसूल के तरीके, तो उनको पढ़ने से पहले किसी ने यहाँ पे मैसेज लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं कि अगर वो ये सोचे कि गुनाह की वजह से आई है लेकिन उसको समझ ना आए कि कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से इस नेमत का जवाल आ रहा ताकि वो उसको छोड़ सके, ये मजमुई या मजमुई गुनाहों की माफी मांगते रहना और अल्लाह की रजा पे राजी रहना ये काफी होगा। उसको समझ ना आए कि कौन सा गुनाह है तो अल्लाह ताला के सामने इस तरह से दुआ मांगे कि ए अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला गुनाह मैं कर रही हूं कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आई है। ठीक है, तो इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो है ना ये वाकई दुआओं को सुनते हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे दिल की तड़प को अल्लाह ताला सुन रहे हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला जो है ना वो उसको मेरे सामने खोलेंगे, खोल देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है कि भाई कौन सा गुनाह है मुझे समझ में नहीं आ रही, अल्लाह आप मेरी इसलाह कर दीजिए, मैं बस अपना हाथ उठाती हूँ, मैं अपने ऊपर से अपनी गिरफ्त को जो है ना वो ढीला करती हूँ, बहुत पकड़ ली मैंने अपनी जिंदगी के ऊपर गिरफ्त, बहुत मैंने मजबूत गिरफ्त के साथ अपनी जिंदगी को चला लिया, अब मैं आपके हवाले करती हूँ। अपने आप को अल्लाह के हवाले करें ना बंदा तो अल्लाह ताला उसको ना सिर्फ दिखा देंगे कौन सा गुनाह है बल्कि उस गुनाह को दूर करने में भी उसकी मदद कर देंगे। ठीक है, इस ये भी तो एक दुआ है ना मांगने की, मजमूई गुनाहों से माफी मांगते रहना वो तो एक अलग दुआ है, लेकिन ये भी तो एक दुआ है कि अल्लाह कौन सा वाला गुनाह है जिसकी वजह से। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद मुसीबत हमारी, अभी चले आगे बात होनी है उसके ऊपर। ठीक है ना, आपको लिखा है, आप पहले तो उसको समझने के लिए 10 मरतबा उसको पढ़ें। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके पास समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है बात अच्छी तरीके से, लेकिन अभी टॉपिक भी वही वाला आ रहा है। तो आगे फरमाते हैं कि तौबा और उसका तरीका, ठीक है, तौबा और उसका तरीका, फरमाते हैं कि तौबा एक ऐसी चीज है यानी अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके में सबसे पहले क्या है, तौबा, सबसे पहला क्या है, तौबा करना। तो तौबा होती क्या है इसको हमने इंशाल्लाह देखना है। तौबा ऐसी चीज है कि इससे सब गुनाह माफ हो जाते हैं, जो शख्स भी अपनी हालत में गौर करेगा उसे महसूस होगा कि हर वक्त कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है, इसलिए हर शख्स को तौबा का एहतमाम करना चाहिए। उसका तरीका यह है कि कुरान और हदीस में गुनाहों पर जो वईदें आई हैं उनको याद करे और अंजाम को सोचे, उससे गुनाह होने पर दिल दुखेगा। इस वक्त चाहिए कि जुबान से भी तौबा करे और जो नमाज रोजा वगैरह फौत हुए हों उनकी कजा करे, अगर बंदों के हुकूक जाया हुए हों तो उनसे माफ करा ले या अदा कर दे, और जो उनके अलावा हुए हों तो उन पर खूब कुढ़े और रोने की शक्ल बनाकर अल्लाह ताला से खूब माफी मांगे। ठीक है, तो ये तो आपने तौबा के नतीजे में क्या होता है, ठीक है, ये आपने सुन लिया, और तौबा करने के बाद क्या करना चाहिए यानी जो हुकूक जो है वो फौत हो गए हैं, नमाज रोजा तो उनकी कजा करे, बंदों के जो हुकूक फौत हो गए हैं तो उनसे माफ करा ले या उनको हुकूक को अदा कर दे, या अगर किसी से माफ नहीं करवा सकता है तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करे या उसकी तरफ से जो है वो सदका खैरात कर दे। ठीक है, जैसे कोई शख्स जो है वो जिसके हुकूक मारे थे वो दुनिया से चला गया, या वो गैर महरम है औरत का तो उससे जाकर के अपने हुकूक माफ करवाना अब इसके लिए मुमकिन नहीं है, जब जिस जमाने में पर्दा नहीं करती थी उस जमाने में गैर महरमों के साथ उठना बैठना होता था तो उनके हुकूक भी मारती थी। ठीक है, उनको कोई चीज उनकी चुरा ली, कोई उनके उनकी गीबत कर दी। ठीक है, लेकिन अब पर्दा शुरू कर लिया है तो अब तो उन गैर महरमों से जाकर के इस तरह से नहीं माफी मांग सकती है ना, तो उनकी तरफ से जो है ना वो अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाइए, अल्लाह उसके मैंने जो सदका किया उसका सवाब जो है वो उसको भी पहुंचा दीजिए वगैरह। और ये कि जो गुनाह हुए उनके ऊपर खूब कुढ़े रोने की शक्ल बना के रहता है, खूब माफी मांगे। तो ये असल जो चीज आखिर में हजरत ने बयान फरमाई है ना वो तौबा की तारीफ में आती है। ठीक है, कि तौबा है क्या, अन्नदमु तौबतुन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाहों के ऊपर नादिम होना ये तौबा है। ठीक है, तो जिन जिन गुनाहों का हमें इल्म है कि हमने गुनाह किए, ठीक है ना, यानी इल्म हासिल हासिल कर लिया आपने पैदाइशी तौर पर, तो नहीं आप माँ के पेट से तो नहीं इल्म लेकर के आए ना कि ये चीज़ गुनाह होती है ये चीज़ सवाब होती है। तो इल्म तो इंसान को हासिल करना पड़ता है इस दुनिया में आकर के। तो जो इल्म हासिल कर लिया है कि भाई फलानी चीज़ गुनाह होती है फलानी चीज़ सवाब होती है, तो उनमें से जो गुनाह अपने अंदर नजर आए उसको, पीछे वाले चैप्टर में सारी की सारी तफसील पढ़ी ना कि भाई कैसे अपने अंदर हमने गुनाह आइडेंटिफाई करने, ठीक है, तो जो गुनाह उसने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उनके ऊपर नादम और शर्मिंदा हो, ठीक है। और उसके अलावा एक जनरल बात अल्लाह ताला से ये भी करे कि ऐ अल्लाह, जिन गुनाहों का मुझे अभी इल्म हासिल नहीं है कि मैंने फलाने भी गुनाह किए, मुझे नहीं पता कि मैंने वो गुनाह किए, ठीक है, तो ऐ अल्लाह मैं उनके ऊपर भी नादम और शर्मिंदा हूँ। मैं किसी भी नाफरमानी के ऊपर जो है ना वो आपके सामने दीदा दलेरी का मुजाहरा नहीं करूंगी कि नहीं वो तो मेरा हक था, वो तो मुझे करना ही था, ठीक है ना। ये नहीं होता है ना कि भाई बहुत सारे गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला से नादिम हो गए शर्मिंदा हो गए, लेकिन एक गुनाह था कि जो कि ना एक बड़ा फेवरेट ड्रामा सीरियल देखना था, ठीक है, तो उसके ऊपर नादिम नहीं हो रही, मैंने कहा नहीं वो तो मुझे देखना ही था, वो तो उसके देखे बगैर तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती थी। या ये कि वो जो ड्रामा सीरियल मैंने देखा ना, उस ड्रामा सीरियल देखने से तो मुझे बड़े फायदे हुए, ठीक है, तो मैं बाकी सारे ड्रामों से तो मैं तौबा करती हूँ, या सीरियल से, इंडिया में सीरियल कहते हैं, मैं बाकी सीरियल से तो तौबा करती हूँ, लेकिन उस वाले सीरियल को जो मैंने देखा था ना उससे तो चूंकि मुझे फलाने फलाने फायदे हुए थे कि भाई उससे जो है ना मुझे कुछ अपनी एजुकेशनल एडवांसमेंट में बड़ा फायदा हुआ था उसके अंदर है, या मुझे जो है ना वो उस ड्रामे से जो है ना वो मुझे अपने घर की प्रॉब्लम समझने में बड़ा बड़ा मदद मिली थी, ठीक है, तो उसके ऊपर जब मैंने अमल किया था तो मेरे घर के प्रॉब्लम्स हल हो गए थे। होता है ना भाई ड्रामों के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात को अच्छा बनाने की भी कभी कभी ड्रामे होते हैं, पुराने जमाने में होते थे, अब तो शायद नहीं होते ऐसे ड्रामे, ठीक है ना, पुराने जमाने में कुछ ड्रामे जो है ना वो होते थे इखलाकी इसलाह के ड्रामे होते थे, है ना, मुआशरे की इसलाह के ड्रामे होते थे, अगर जो होते वो सारे के सारे हराम ही थे, लेकिन टाइटल उनके ऊपर मुआशरे की इसलाह का लगाया हुआ होता था और धोखा ऐसा दे देते थे जैसे वाकई मुआशरे की इसलाह इन ड्रामों से हो जाएगी, ठीक है, तो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक अच्छे बनाने के बारे में बड़े ड्रामे होते थे, और वो ड्रामे ही होते थे असल में, लव ड्रामा जिसको ड्रामेबाजी कहा जाता है, तो उस ड्रामे को देख के ना मेरे शौहर के साथ मेरे ताल्लुक अच्छे हो गए थे, तो मैं उस ड्रामे पे तौबा नहीं करती, बाकी सारे ड्रामों पर मैं तौबा करती हूँ, नहीं उस ड्रामे को देखने में भी जो आपने गुनाह किए हैं ना वो भी गुनाह ही है, बेशक उससे आपको कोई बजाहिर फायदा मिल गया, बजाहिर फायदा मिल गया, लेकिन गुनाह को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी दुनियावी फायदे की वजह से या किसी मुआशरती फायदे की वजह से, गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकते, गुनाह के ऊपर तो नादिम होना शर्त है, लाजिम है, ठीक है, तो अन्नद मुतौबतन, कोई ऐसा गुनाह ना रह जाए हमारी जिंदगी में कि जिसके ऊपर हम नादिम नहीं है, ठीक है ना। औलाद की बुरी तरबियत, औलाद को अल्लाह के रास्ते पे नहीं चला करके जितना बड़ा गुनाह किया है, राइट, उसको गुनाह मानना, ये वालदैन नहीं मानते इस बात को, वालदैन मुसिर होते हैं, दीनदार भी बन जाते हैं, दाढ़ियां भी उगाती हैं, और ताकि बुरका भी करना शुरू हो जाती है, नमाजें भी पढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन औलाद की परवरिश में उन्होंने दीन को कैसे पसे पुश्त डाला है और कैसे जो है वो दुनियावी ख्वाहिशात को जो है वो आगे रखा है, इसके ऊपर नादिम नहीं होती, इसके ऊपर नादिम नहीं होती और माए या इवन बाप, ठीक है, तो भाई नादिम हो ना अपनी औलाद की परवरिश में जो करी हैं हरकतें, नादिम हुए बगैर तौबा नहीं होती, तौबा हुई नहीं है अभी तक, इसका मतलब है कि अगर नादिम नहीं है उसके ऊपर। है, तो इसी वजह से कांग्रेस के लिए हमारे मशायख एक मिसाल समझाते हैं कि दौबा जो है ना, ये यू टर्न है, यू टर्न, और ये सिर्फ एक गुनाह से यू टर्न नहीं है, दो गुनाहों से यू टर्न नहीं है, ये तमाम गुनाहों से यू टर्न है, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि हम यू टर्न को समझते हैं गुनाहों को छोड़ देना, नहीं। क्यों ये बात इसलिए की जाती है कि गुनाहों को छोड़ देने का मतलब ये होता है कि आइंदा आपसे बिल्कुल भी गुनाह ना हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने तौबा कर ली और अब जो है वो बिल्कुल गुनाह ना हो। इंसान इतना, इंसान कोई रोबोट नहीं है, इंसान कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। ये एक दफा जो है ना उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, स्विच ऑफ करके जो है वो स्विच ऑन कर दिया और सब कुछ जो है वो पीछे का डिलीट हो गया और जो है ना वो अब जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। नामे आमाल एक अलग चीज है, नामे आमाल रूहानी दुनिया की चीज है, ठीक है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो गुनाहों से तौबा करने वाला होता है ना वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके नाम है आमाल के अंदर से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी वो शख्स जिसने अपने तमाम गुनाहों के ऊपर नदामत और शर्मिंदगी कर ली, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा उससे गुनाह हो नहीं सकते। गुनाहों का होना ये जिस्मानी दुनिया की चीज, ये मादी दुनिया की चीज, ठीक है ना। और मादी दुनिया के अंदर जो है ना, ये एकदम से बटन दबाते चीजें नहीं हो जाती। मादी दुनिया के अंदर तदरीजन चीजें होती हैं। तो गुनाहों से निकलना, गुनाहों की जिंदगी को छोड़ना, ये भी तदरीजन होता है। बात समझ में आ रही? ये दो अलग अलग चीजें हैं। तौबा करना ये तदरीजन नहीं होता, ये एकदम से होता है, फौरन होता है, फौरन तौबा कर लिया है। अल्लाह मैं सब तरक तो लात वल उज्जा जमिया, मैंने सारे लात और उज्जा जो है ना वो छोड़ दी, ये अल्लाह ताला से इरादा कर लिया। अपनी माजी की जिंदगी के ऊपर नादिम हो गए, शर्मिंदा हो गए अल्लाह ताला के सामने, ठीक है ना, और आइंदा ना करने का इरादा कर लिया। ये काम जो है ना, ये दो काम, ये तदरीजन नहीं होते, ये एकदम होते हैं, फौरन एक लम्हे में ये काम होता है, ठीक है। लेकिन अब आइंदा वो गुनाह ना करना, ये एकदम नहीं होता, ये तदरीजन होता है। इसमें आपसे मिस्टेक्स होंगी, फिर से वो गुनाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसने तौबा कर ली वो उस गुनाह के ऊपर इसरार नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अब नादिम हो चुका है उसके ऊपर, और वो तो अल्लाह ताला से इरादा कर चुका है, अल्लाह मैं नहीं करूंगा। लेकिन उससे हो गया, जब हो गया तो अब वो इसरार नहीं करेगा, वो क्या कहते हैं, हुज्जत ही नहीं बनाएगा उसकी, बल्कि वो फिर से तौबा कर लेगा, फिर से इस्तग़फ़ार करेगा, ठीक है। तो तौबा यू टर्न को कहते हैं, और यू टर्न का मतलब क्या कि रूहानी तौर पर यू टर्न, अपने जहनी सोच के अंदर यू टर्न हो गई इसकी, सोच के एतबार से इसने यू टर्न ले लिया है। जिसने सोच के एतबार से यू टर्न नहीं लिया ना, यानी वो अभी भी कुछ गुनाहों को जस्टिफाई कर रहा है, कुछ गुनाहों को जो है वो अच्छा समझ रहा है, उसने तौबा नहीं करी है, उसने तौबा नहीं करी है, ठीक है। जिसने अपनी सोच में यू टर्न नहीं लिया है उसने तौबा नहीं करी है, और जिसने सोच में यू टर्न ले लिया है अपना, उसने तौबा कर ली है। क्या समझ में आया? फर्क समझ में आया? गुनाह छोड़ना या ना छोड़ना, ये नहीं है, ठीक है। वो तो कोई इंसान नहीं छोड़ सकता, इल्ला माशाल्लाह, कि जिसने 100% गुनाह छोड़ दिया और आइंदा उससे नहीं हुए को गुनाह, नहीं, ऐसा नहीं होता किसी इंसान से, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में खास फर्क, बहुत 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 इम्पोर्टेंट फर्क है। ठीक है, अच्छा एक और बात, बस चूंकि पहले मैंने कह दी थी कि करनी है इस क्लास में, तो वो ये है कि जब हम गुनाह करते हैं ना, तो उस गुनाह का लाजमन एक मनफी असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है, लाजमन पड़ता है, और जिंदगी के अंदर कुछ मामला खराब हो जाता है, जो पहले से ही था खराब हो गया। किस वजह से खराब हुआ? गुनाह की वजह से खराब हुआ, अल्लाह ताला ने खराब किया, क्योंकि हमने अल्लाह की नाफरमानी करी, अल्लाह ताला ने मामला खराब कर दिया। फिर हमने कर ली तौबा, ठीक है, हमने कर ली गुनाह से तौबा। अब क्या अल्लाह ताला उस मामले को रिवर्स कर देंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी में एक तब्दीली, मनफी तब्दीली लाई थी, क्या अल्लाह ताला उसको रिवर्स कर देंगे, उसको वापस कर देंगे? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर अल्लाह ताला करते नहीं है ऐसे। ठीक है ना, इसकी कोई सबसे बड़ी मिसाल दे आप में से, सबसे बड़ी मिसाल इसमें इसकी, या सबसे अव्वल मिसाल, गुनाह किया, अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में हमारी जिंदगी में एक मेजर मनफी तब्दीली ला दी, फिर उसके बाद हमने तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, लेकिन उस मामले को रिवर्स नहीं किया। क्या मिसाल है भाई इसकी? नहीं, ज्यादा आसान मिसाल दें, इस मिसाल को तो समझाने में इतना टाइम लग जाएगा जो आपने दी है, या जस्टिफाई करने में मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहली और सबसे अव्वल और सबसे बड़ी मिसाल इसकी क्या है? हम किधर बैठे हुए हैं हम सारे के सारे, और क्यों बैठे हुए हैं? हमें तो कहीं और होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था हमें? हमें तो जन्नत में होना चाहिए था, हमारे बाप दादा की जो जागीर है जन्नत, राइट? तो भाई आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा तो जन्नत में रह रही थी, ठीक है ना, उनसे हो गया एक, मतलब उनके लेवल के हिसाब से जो है वो मासियत ही थी ना, ठीक है ना। तो जब अल्लाह ताला के एक हुक्म की नाफरमानी हो गई कि दरख्त के करीब मत जाना, खा लिया उन्होंने दरख्त शैतान के धोखों की वजह से, ठीक है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर उतार दिया, ठीक है। अब जमीन पर उतारने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा कर ली, और अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल भी कर लिया, लेकिन क्या उनको रिटर्न किया जन्नत में? नहीं, रिटर्न तो नहीं किया। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम, वो जो किब्ती और बनी इसराइल के बंदे के दरमियान जो है वो फाइटिंग हो रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती को जो है वो पंच मारा, वो उधर ही टेक्निकल नॉकआउट हो गया, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह ताला से तौबा करी, ओहो ये तो इन्नहु मिन अमलिश शैतान, ये तो शैतान का अमल मुझसे हो गया, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 कोई शैतान का अमल नहीं हुआ, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया था, अपने साथी की मदद कर रहे थे, तो शैतान का अमल कोई थोड़ी हुआ। नहीं, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, यानी वाकई उनसे ये गुनाह हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ था, अल्लाह ताला से उन्होंने तौबा कर लिया, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, लेकिन मिस्र से जो निकलने वाला मामला उसकी वजह से उनको करना पड़ा, तो क्या अल्लाह ताला ने उसको रिवर्स किया कि उस मामले को छुपा देते, किसी को पता ना चलता, इनको मिस्र छोड़ के ना जाना पड़ता, या फिर ऑन के साथियों के जो है वो कोई काम खराब कर देते, वो फिर ऑन के साथी उनको मारने के लिए नहीं आ सकते, तो इनको मिस्र छोड़ के ना जाना पड़ता? नहीं, वो तो एक रिएक्शन ट्रिगर हो गया, अब उसको अल्लाह ताला ने रिवर्स नहीं किया। उसी तरह से बेशुमार हमारी जिंदगी में मामला आते हैं कि हम अपनी गलतियों की वजह से जो है ना कोई मुसीबत जनरेट कर देते हैं, जब मुसीबत जनरेट हो जाती है ना, और वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती है, अब जो है ना हम चाहते हैं कि वो रिवर्स हो जाए, ठीक है ना भाई, अल्लाह ताला का फैसला होगा तो रिवर्स होगी, वो अगर नहीं होगा तो रिवर्स नहीं होगी। अब आपको उसी को लेके चलना है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जमीन में उतरने का फैसला फरमा दिया ना, अब उनको जमीन में ही लेके चलना है अपने मामले को। अब वो बैठे हुए जमीन में जो है ना वो रोते रहे खाली बैठ करके, नहीं नहीं मुझे तो वापस जाना है, मुझे तो वापस जाना है, मैं नहीं खेल रहा, नहीं नाउज बिल्ला, आदम अलैहिस्सलाम बैठ के और अम्मा हव्वा बैठ के, नहीं हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, हम यहाँ जमीन में नहीं रहते, हमें तो वापस जाना है बाय हुक और बाय क्रुक, राइट, हमें तो बस वापस जाना है, फिर हम बात करेंगे, वरना हम बात ही नहीं करते। तो क्या ख्याल है फिर, अल्लाह ताला राजी होते उससे? नहीं, अल्लाह ताला का फैसला हो गया, अब अल्लाह के फैसले में राजी रहोगे, वरना मजीद गुनाहों के मुर्तकिब हो गए। राइट, क्या मामला है? गुनाह की वजह से जो तुम्हें सजा मिल चुकी है ना, अब वो सजा भी अल्लाह ताला की रजा समझ करके, ये मत कि भाई अब तो चलो अब गुनाह हो गया ना, अब सजा मिल गई ना, मैं और गुनाह करूंगा, एक दफा तो सजा मिल गई और मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है ना, अब गुनाह नहीं करना वो वाला, ठीक है ना, या अब गुनाह नहीं करना, मैंने बस जो मेरे सामने दीन है मैंने दीन पे अमल करने की कोशिश करनी है, और जो अल्लाह ताला मेरे लिए फैसला फरमा चुके हैं मुझे उसके ऊपर राजी रहना है, मुझे उसके ऊपर राजी रहना है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भी राजी रहे अल्लाह ताला के फैसले के ऊपर कि घर बार छोड़ करके जो है वो एकदम दयारे गैर में जाना पड़ गया। बात समझ में आई, आ गई कि नहीं, जिनके नहीं समझ में आ रही थी? आपने क्या लिखा था कि हो सकता है अल्लाह ताला उसके लिए और बेहतर बनाना चाहते होंगे। हाँ, अल्लाह ताला से जो खैर की उम्मीद रखेगा, अल्लाह ताला इस सजा को भी उसके लिए खैर बना देंगे, है ना? ठीक है, चलें आज क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास से पहले चंद मिनटों की ब्रेक लेकर के उसके बाद हम सानी सांस की क्लास शुरू करते हैं। आखिर दावान आने